ओके उसके बाद कंसिडर करें कि वी हैव अ पेशेंट हु हैज़ अ नोड्यूलर स्वेलिंग ऑन द फेस विच कैन बी प्रेजेंट ऑन एनी एरिया ऑफ द फेस सेम इंस्टेंस इट इज़ प्रेजेंट ऑन द नोज और इट इज़ प्रेजेंट ऑन द चीक्स एक्सटेंडिंग टू द पेरिओर्बिटल एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडिंग टू इन्वॉल्व द प्रीऑरिक्युलर एरिया मैंडिबल It is non-tender, a normal temperature, slightly infiltrated, erythematous to hyperpigmented, with an overlying plaque with the hyperpigmented areas in the center as well as telangiectasias. ये जो इसकी scenario I'm reading it from somewhere. So I'm giving an overview कि lupus panniculitis, although lupus panniculitis या इसकी जो भी differentials हम discuss करेंगे इसमें हमारे पास different presentations होती है लेकिन जहाँ कहीं भी panniculitis होता है उसमें जो भी affected area है it will be swollen and it will be extending to the surrounding areas. The overlying skin can be warm और टेंडर लेकिन यूजुअली क्योंकि काफ़ी डीप सबक्यूटेनियस टिश्यू की इन्फ्लेमेशन है तो इस वजह से ओवरलाइंग स्किन वार्म हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है टेंडरनेस मे बी प्रेजेंट ऑन और मे बी एब्सेंट बिसाइड्स दिस जो भी ओवरलाइंग स्किन की चेंजेस होती हैं वो डिपेंड करता है कि जो अंडरलाइन कॉज है पैनिकुलाइटिस की वो क्या है तो यहाँ पे जो सिनेरियो लिखा हुआ है कि उसमें ओवरलाइंग स्किन हाइपोपिगमेंटेड है मार्जिन्स हाइपरपिगमेंटेड हो सकते हैं सेंट्रल एट्रोफी है उसमें टेलेंजिएक्टेसियास है तो वो डीएलई की तरफ इशारा कर रहा है बट इट कैन बी जो सरफेस चेंजेस हैं वो एब्सेंट भी हो सकते हैं तो अगर हमें कहीं भी इस तरह की इल डिफाइंड स्वेलिंग मिलती है जो कि एक्सटेंड करी है द सराउंडिंग एरियाज एंड इट इज़ क्वाइट इंड्यूरेटेड तो फिर उसकी डीडीज़ में हम अपनी पैनिकुलाइटिस को ज़रूर रखते हैं उसके अलावा इस तरह की प्रेजेंटेशन में बाकी की जो डीडीज़ हमारे पास जो सेफ हम रख सकते हैं वो है सार्कोइडोसिस लुपस लुपस वल्गैरिस या डाउन द लिस्ट हम इसमें डी फंगल इन्फेक्शंस भी रख सकते हैं लेकिन डी फंगल इन्फेक्शंस के लिए ओवरलाइन क्रस्टिंग या कुछ इस तरह होना चाहिए तो अगर 3 DDs हमने रखनी है तो उसमें हम फिर पैनिकुलाइटिस सार्कोइडोसिस और लुपस वल्गैरिस को सेफली रख सकते हैं तो इनकी रेलिवेंट एग्जामिनेशन जो जो हमने एली सार्कोइडोसिस और लुपस वल्गैरिस के लिए जो भी हमने डिस्कस की थी वही एग्जामिनेशन रेलिवेंट एग्जामिनेशन होगी इंस्पेक्शन और पैल्पेशन के बाद फिर हमने बाकी की जो रेलिवेंट एग्जामिनेशन है से एली के लिए उस पर हमने स्कैल्प फेस जो भी फोटो एक्सपोज्ड एरियाज होंगे देन फिर उसके बाद हमने ओरल कैविटी एग्जामिन करनी है ईयर्स को शूस्टर साइन के लिए देखना है फिर हमने मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन जॉइंट्स की एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं भूलनी सार्कोइडोसिस के लिए ऑक्यूलर एग्जामिनेशन चेस्ट एस्कल्टेशन और जॉइंट की एग्जामिनेशन इज़ अ मस्ट उसके बाद अगर हम लुपस वल्गैरिस की बात करते हैं तो उसमें चेस्ट एस्कल्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अगर इनमें टाइम हो तो फिर हम लिवर स्प्लीन के पैल्पेशन भी ज़रूर करेंगे सार्कोइडोसिस में भी लुपस वल्गैरिस में भी और जो भी रीजनल एरिया है उसके रीजनल लिम्फ नोड्स को भी हमने पैल्पेट करना है